أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ما صاركم. صدق الله مولانا العظيم. عزیز و دوستو، میں اور ہم سب جو یہاں پہ آ سکے اور وہ تمام ساتھیوں کے پر بچے کے باوجود یہاں نہ آ سکے، میں علی جی کی طرف سے آپ سب کو اور ان سب کو شدوار کھانے کے لیے کہتا ہوں اور اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یہاں پہ آنا اور یہاں پہ رہنا اپنی بار کا اسی میں پورا مزید ہونا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ پہاڑ، یہ گلشن تا قیامت ایسے ہی صدا ہوتا ہے اور دن ب دن اس میں اضافہ ہوتا جائے. جیسا کہ رضا جی نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک ساتھی کے دل میں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، ان کی آپ دیکھیے ہیں، اور ہر شخص اس اسٹیج پہ آ کے اس جماعت کا سخی بنتا ہے، اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی بات کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ حقیقت کا روپ دیا جا سکے وہ دیا جا سکے، مگر کیفیت اور کیفیات کی محسوسات کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اور جس طرح سے انسان کنوے کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے اس کی آبتی اس کے ساتھ پیش آتی ہے، شاید اس طریقے سے اپنے میسج کو کنوے نہیں کر سکتا. میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے تو میں حضرت جی سے سب سے کہتے ہوں معذرت کرتا ہوں. یہ 2008 کا واقعہ ہے جب میری دہی حالاتی سندھ رینجر میں نوابشاہ کے شہر میں تھی. ہمیں کچھ ایسی ڈیوٹیز ملی ہوئی تھی جس میں ہم پولیس کو اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے. اس حصے میں ہماری میل ملاقاتیں ان سے بہت زیادہ رہتی تھی. ہمارے پاس ان کا آنا جانا اور ہمارا ان کے پاس جانا ایک مقبول کی بات تھی. اسی طرح مجھے ایک دن ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہوا. طارق صاحب ان کا نام تھا اور یقیناً وہ فیڈرل سیکٹر ہوئے، اور ان کے پاس 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی اسلام ورز کر کے بیٹھ گیا. وہ سب کے ساتھ اور یا اللہ سارے دن کے اپنے اپنے انداز میں واقعات اس سے کہانیاں بنا رہے بتا رہے تھے. اس لیے میں خاموشی سے سنتا رہا. پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے کس سے کہانیاں آپ نے سنائے ہیں، ان صاف کی خاموش کی دستی آپ کو ملی. سب کہنے لگے کہ نہیں جی، یہ تو ہم نے سب کتابوں سے پڑھا ہے، ہمارا اس ایسی کسی سے واسطہ تو نہیں پڑا. ان میں ایک شخص تھے، اس کا نام تھا اللہ دین بیٹری. وہ بہت بڑے اس علاقے کے لینڈ لارڈ تھے. یہاں سے ان کے کچھ ساتھی نظر آتے ہیں، تو وہ خوبی ان کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے لینڈ لارڈ تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ کو کسی ایسی بستی سے واسطہ پڑا ہے؟ میں چاہ رہی ہوں مجھے ایسے شہر کے کام ملے ہیں جن کے پاس صرف بیٹھ جانے سے علم کے بھی عمل ہو جاتا ہے. اس طرح سے میں نے 2-4 دفعہ یہ بات بتائی کہ میں ایسی ہستی سے اٹیچ ہوں جن کے پاس بیٹھ جانے سے علم کو مکمل ہو جاتا ہے. باقی انہیں تو اتنا خیال نہ کیا، نہ انہوں نے کوئی پیچھا کیا. تو یہ جو شخص تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا موبائل نمبر مجھے نوٹ کروائیں اور मेरा मोबाइल नंबर आपको नोट कर लें। वो सारा काम करके तो मैं अपने ऑफिस चला गया, कुछ ही देर बाद उनका मुझे फोन आया कि आप आज शाम को मेरे घर ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कोई इसमें इज्जत तो नहीं है। तो मैंने उन्हें पहले कहा कि नहीं, आप मेरे घर तशरीफ आए और वहां बातचीत होगी। वो कहने लगे कि वजह यह है कि मेरे और भी आठ दस साथी हैं, दोस्त हैं, मैं आऊंगा तो अकेला आऊंगा और वो मैसेज मिलाए जाएंगे, तो आप इस तरह से करें कि मेरे घर में खाना भी मेरे पास खाएं और ये जो बातचीत आपने वहां की है ये हमें सुनाए। मैं वादे के मुताबिक मगर की माँ से कुछ पहले उसके घर में चला गया। वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं अपने इलाके के, 1500 रुपया जमीन के वो मालिक हैं, अल्लाह ने टैक्स लिया। उनका जो घर था वो कोई 4-5 एकड़ में था। मुझे पहले इतना अंदाजा नहीं था कि ये इतने बड़े जिम्मेदार होंगे, इतने बड़े आदमी होंगे। जब उनके घर में गया तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मेरा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा खाना है, कुछ खाना पेश किया और उसके बाद मुझे बताने लगे कि उस हस्ती के बारे में, उस बंदे कामल के बारे में आगाही दे कि आपको कैसे पता चला। मैंने उन्हें बताया कि कर्नल सिंह मेरी यूनिट के हैं, उनकी शख्सियत उनकी मेहरबानी। उन्होंने मुझे अजय जी के बारे में बताया और उनके बताने से 1997 में अजय जी के रूप में पेश हुआ और फिर थोड़ा है मां साहब की दीर्घना शक्कर और कश्मीर के साथियों की दीर्घना हो चुके हैं, उनको मुझे कभी ना बोलेंगी। उस वजह से अजय जी का पूर्व नसीब हुआ, अजय जी के पास बार बार आना नसीब हुआ। इस तरीके से उनसे बातचीत होती रही। मैंने उनको टीका जिक्र बताया कि हमारा टीका यह है कि अगर इस तरीके से जिक्र किया जाए और शेख के साथ मुकम्मल रबता हो तो कुछ ही वक्त के बाद पहले की जो हालत है वो बदलना शुरू हो जाती है। जो जबान झूठ बोलने की आदी होती है वो सच बोलना शुरू करती है। जो काम गाना और मौसीकी के आदि होते हैं वो काम अल्लाह के पुराने पाठ को तरजीह देना शुरू करते हैं, और जो आंख बेहया होती है उसके अंदर हया आ जाती है। और जो बंदा अल्लाह के खौफ से लापरवाही इख्तियार करता है दीन की दूरी की वजह से, उसके अंदर अल्लाह का खौफ और तकवा पैदा होना शुरू हो जाता है। चल रही है और परेशानी भी थी। मैंने कहा कि आप ये नमाज पढ़ते हैं जो एक रूटीन की नमाज है और एक वो नमाज है जब शेख के काम में तवज्जो देते हैं फिर उसकी इस तरह से कैफियत बदलती है कि आप कोशिश करते हैं कि बाद जमात नमाज पढ़ी जाए। जबकि आप उसमें पढ़ने कैजुअल होते हैं तो जमात के अंदर आपकी कोशिश होती है कि सत्य बने, अगली कोशिश होती है कि आप तकबीर उल्लाह के साथ नमाज पढ़ें, फिर आपकी कोशिश होती है कि सब के पहली सब को लेकर उसके दाएं तरफ खड़ा हो जाए, फिर आपकी कभी कोशिश होती है कि ध्यान जमा के नमाज पढ़ी जाए। इस तरह की जब मैंने उनसे बातचीत की वो कहती कहती उनसे मुलाकात की और दलाल सूद के बारे में मैंने एक चीज मुझे जबानी याद भी याद है जो हजरत जी से मैंने सन 2000 में पहली दफा सुनी थी। उसके बाद मुझे आप भी याद है कि हजरत जी ने जो खत लिखा वो शेख उल कदम को, जिनकी कोशों काशों से आज ये बात सच जो शदा हुआ। उसके खत में ये अल्फाज भी के बेटा मैं उन बदलाने खुदा में से हूं जिसके पास बैठने वाला शख्स बदबक भी रह सकता। बेटा मैं उन बदलाने खुदा में से हूं जिसके पास बैठने वाला शख्स बदबक नहीं रह सकता। इस समय दो तीन तरफ से बातचीत की तो मैंने देखा कि उनके ऊपर और मेरे अपने ऊपर भी एक तस्वीर तारी होगी। बैठ के ईस्टर्न ग्रेट के अफसर इतने बड़े लैंड लॉर्ड मुझे कहने लगे कि जिक्र तो हम बाद में कर लेते हैं लेकिन उस हस्ती से मुलाकात कैसे हो। मैंने कहा कि हमारे हजरत जी चुपारा की ऊंची में रहते हैं और उसमें ताजी खुशी खाई कुछ हफ्ते बाद तीन चार आपका इतना है तो हम आपसे मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने एड्रेस भी नोट कर लिया, हजरत जी का फोन नंबर भी नोट कर लिया और मुझे कहा कि चले आप जिक्र करवाए। तो मैंने उनको 10-15 मिनट जिक्र करवाया, दुआ हो गई, फिर मैं अपने घर चला गया। उनकी दो शादियां थी और एक वो ज्यादातर डिफेंस में रहते थे कराची, लेकिन जब उनके साथ ये मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने वक्त को रिवाइज कर लिया। वो दो तीन दिन वहां रहते थे कराची में और तीन चार दिन वो नौशा में रहती थी और उनको मैंने अंदर को ये सारे वाक्य की सुना दी। अंदर जी ने फरमाया कि उन्होंने दलाली सूख को कुछ जो है दलाली सूख को मैंने उनको दलाली सूख दी। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी खिदमत में बड़ा हाजिर हुआ तो सारी दलाली जो उनको पढ़ चुके थे और उसको मुश्किल अफाज को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ था जिसमें कुछ अफाजों की दृष्टि मुझे आती थी और कुछ की नहीं आती थी। कदम सिंह में उनके नजर मिले तो मैंने उनके घर से इनको फोन किया। मैंने कहा सर ये अफवाह हैं कि समझ नहीं आती, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा समझा दें। तो कदम सिंह को अल्लाह तला ने नजर जी की दुआओं की बरकत से सारा कुछ है, इनकी नजर कामों की वजह से जो कुछ है हम सब के अंदर जो सलाहियत है ये पैदा हुई अल्लाह के दीन को कबूल करने की और अल्लाह दीन को दाई करने की। वो पूरी की पूरी नजर जी की तवज्जो का नतीजा है, उनकी शफकत का नतीजा है। उत्तर सिंह को बड़ा मलका है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि जिसका ये माँ है इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है। उन्होंने कहा ठीक है मुझे अभी इसकी समझ आ गई। फिर अजय ने घुमाया कि उत्तर सिंह नजरी का स्टेप जो है ना वो लेके दी, तो मैंने उत्तर सिंह नजरी का स्टेप पेश किया। उनकी रूटीन इस तरह से थी कि वो जब कराची से नौशा के लिए चलते वो मुझसे एक दिन पहले रास्ता करते, कराची से थोड़ी देर बाद हमारे रास्ते मुरियाबाद वगैरह एरिया में फिर मुझसे पूछते कि भाई साहब आपकी कोई कमिटमेंट तो नहीं है, ऑफिशियलिटी तो नहीं है, मैंने कभी कोई कमिटमेंट नहीं कोई ऑफिशियलिटी नहीं है। इसी तरह फिर हैदराबाद के टीम पहुँच के इसी तरह ही आगे पूछते पूछते पहुँच जाते और असर के बाद फोन करना शुरू कर देते। मैंने कहा था कि मैं आपकी सुगंधा रहूँगा, फिर हम कोई कुछ करते और बहुत साथी भी आते हैं उनके दोस्त अखबार और पूरी मैच को दो से तीन घंटों को मुश्किल होती थी। इस सारे अरसे में वो मोबाइल ऑफ कर देते और कोई और बातचीत ना करते, सदर जी के बारे में मुझे बताएं, सदर जी के बारे में मुझे बताया। तो जो मुझे जितनी मेरी आबीदियाँ थी, जितने मेरे वाकयात थे, जितने मैंने शायद उनको सुनाया किसी और के साथ में डिस्कस नहीं कर सका। फिर इस दौरान आमों का सीजन आ गया, उन्होंने आम वगैरह बचवाए, फिर वक्त आ गया फजर जी तशीफ ले आए। तो 10-12 साथी ने नौशा के रूप में लेके गया और वो खुद अपने डिफेंस वाले घर से आ गए। मुझे याद है अच्छी तरीके से वो टाइम जो उस वक्त वो साल का जिस साल कराची वाले नए मरकज का फजर जी ने इस्तीफा फरमाया था, फजर जी इस्तीफा फरमा के वापस आ रहे थे तो वो सामने खड़े थे। तो मैंने उनका कॉल करवाया, फजर जी ने फरमाया कि कॉल जी ये हीरा कहाँ से लेता है। दो तीन दफा जी ने ये शाह फरमाया कि कॉल जी ये हीरा कहाँ से लेकर आया। तो सड़क दोनों तरफ होती है, ये वन वे ट्रैफिक आई गई। वो शाम को जिक्र करके इश्ती ले गए और सुबह जब जब के टाइम आए तो उनकी शेर बड़ी मतलब जो रेगुलर शेर करती थी। इश्तराक के दवा पर नाश्ते के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपने शेर नहीं किया आज। वो कहने लगे कि जो पहले शेर करती अल्लाह खुदा आपको माफ करी, अब शेर नहीं हो सकती। तो शाम को जब तशरीफ लाए जिक्र हो गया, आज जी के साथ मुलाकात हुई, अदर जी के साथ खाना खाया, तो मैंने उन्हें खुद कहा कि आप तशरीफ ले लें अपने घर और सुबह इसी टाइम पर वापस आ जाए। कहने लगे कि मैंने अभी घर नहीं जाना, मैं इधर ही रुकूंगा। वो हजरत जी की डायरेक्शन की वजह से मैंने उनके लिए अच्छा बंदोबस्त किया इस तरह का, मगर वो कहने लगे तो मैंने इस विषय के नहीं सुना, मैंने कहा आपने कहा सुना है, कहने लगे जहाँ हजरत जी जूतियाँ पाते हैं मेरा बिस्तर वहाँ पर लगा दूँ। तो इतना बड़ा अमीर आदमी, इतनी बड़ी जायदाद का मालिक, इतनी जल्दी उसके दिल में मेरे रब ने हजरत जी की तवज्जो से बात उठा, मैंने खैर उसका वहाँ पे बिस्तर लगा दिया, उसकी बात ही मैं तो लेट गया कि ये रात को कहीं वॉशरूम के लिए गए तो उनकी सहूलत है। बड़ी गर्मी थी, मैंने देखा कि उन्होंने वो जो सलाई वगैरह थी उसको साइड पर किया हुआ है, अच्छी ग्रीन उतार दी और बनियान भी ऐसे उनको और वो उसके सोए हुए। सुबह जब जाके उससे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मैंने सब ये आपने क्या किया, आप पढ़ाई पे सोते गधे भी सोते आराम करके, कहने लगे कि मेरे साहब उम्र जो है बहुत कम रह गई और मैं बहुत गुनाहगार आदमी, मैं चाहता ये हूँ कि मेरे इस गुनाहगार जिस्म के साथ हजरत जी की जूतियों की खाक लग जाए, जब मैं अल्लाह के सामने पेश हूँ तो रब जो लाज रखी जानता है वो इस मट्टी की लाज रख के मेरा बेटा पास। फिर वो खैर इस समय खत्म हुआ, वो अपने रातशी रह गए, इस्लाम कहाँ जाना रहा। एक दिन मुझे उन्होंने बुलाया कि इस्लाम मौलाना साहब के पास आए, वो आज भी वर्षा में बहुत बड़े आदमी हैं और एक साल आदमी हैं, मैंने कहा कि वहाँ क्यों जाना है, कहने लगे कि मैंने जायदाद जो है उसकी खुशी जा रही है, मैं तो सपरा आदमी नहीं मुश्किल पहले नहीं रखता। खैर मुझे अपने साथ उस आदमी के पास ले गए और उनको मैंने कहा कि ये मेरी जायदाद है और ये मेरी जायदाद के हिस्सेदार है, जायदाद का कुछ हिस्सा उन्होंने वक्त आम किया और बाकी सारी जायदाद को मैंने मुझे मुख्तार रास्ते लगे कि बड़ी जायदाद है, मैं अकॉर्डिंग टू उसको उठाऊंगा और किसी और आदमी दिन से भी उसको मैं डिस्कस करूंगा, फिर आपके घर में आ जाऊंगा, आप तहसीलदार दवाई की बनाए तो जायदाद तसीब हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने जिस जगीर को बनाने में उनके बाप दादा परदादा पता नहीं कितनी नस्लें लग गई होंगी, नजर जी की निगाहें कर दी सकती कोई ना भरवा दी किताब मेरे साथ बच्चे क्या कहेंगे मेरी क्या करेंगे, सब कुछ सब के नाम रखी और जमीन जायदाद का कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम के लिए वर्ष कर दिया और अपने लिए छोटी चलानी ना रखी, बता मेरे अकाउंट में दोबारा कोई बैलेंस नहीं। इसी तरह से मुलाकातें रहती हैं और एक दिन हम घर गया कि आपकी बात है, तो वो कहने लगे हमसे रहते कहने लगे कि मैंने तलाक दे दी, मैंने तलाक दे दी। तो उनकी दो बीवियां मुझे इतना ही था, मैंने कहा कि ये डैडी साहब आपने शक्ल नहीं किया, फिर वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि डैडी साहब मैंने तलाक दे दी, मैंने तलाक दे दी। फिर मैंने यही मैंने कहा डैडी साहब ने कहा काफी चिंतित किया, हंस रहे थे, मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं मैंने दुनिया उसकी मोहब्बत को तलाक दे दी और मैंने अपने शहर से अल्लाह के कलाम से मोहब्बत कर ली। और ये वो डैडी साहब ने जब से रजनी ने उनका हाथ पकड़ा थोड़ी सी देर के लिए मैं उसका चश्मदीद हुआ, उसके बाद कहते थे मैं कम से कम 30 वाले और ज्यादा से ज्यादा 10 वाले दिन उतार, हर किसी की बुराइयों से उनको नफरत अदा के दिल में डाल दी और वो इस लाइन से चले। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ईमान से